लीजिए सुनिए रबीन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी गुप्तधन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अमावस की अंधेरी रात है। चंद्रशेखर तांत्रिक रीति से अपनी बहुत दिनों की गृह देवी भद्रकाली की पूजा कर रहे हैं। पूजा समाप्त करके जब वे उठे तब पास ही के आम के बाग से सवेरे का कौओं का शब्द सुनाई पड़ा। चंद्रशेखर ने पीछे फिरकर देखा, पीछे का द्वार बंद था। तब उन्होंने एक बार मूर्ति के चरणों में प्रणाम करके आसन को हटा दिया। उस आसन के नीचे एक लकड़ी का संदूक निकला, जनेऊ में चाबी बंधी हुई थी। उसी से चंद्रशेखर ने उस संदूक को खोला। खोलते ही चौंक कर उन्होंने माथा पीट लिया। चंद्रशेखर के घर से मिला हुआ एक हाता है, हाता पक्की दीवार से घिरा हुआ है। उसके भीतर बगिया है। बगिया के एक छोर पर बड़े बड़े पेड़ों की छाया के अंधकार में ये छोटा सा मंदिर है। मंदिर में भद्रकाली की मूर्ति के सिवा और कुछ नहीं है। मंदिर के भीतर जाने के लिए एक ही द्वार है। चंद्रशेखर ने उस संदूक को बहुत देर तक उलट पुलट कर देखा। खुलने के पहले वो बंद ही था, किसी ने उसे तोड़ा फोड़ा नहीं। चंद्रशेखर ने कई बार प्रतिमा के चारों ओर हाथ से टटोल टटोल कर देखा, पर कुछ मिला नहीं। उन्होंने पागल की तरह होकर मंदिर का द्वार खोल दिया। उस समय प्रातःकाल का प्रकाश अच्छी तरह फैल चुका था। चंद्रशेखर मंदिर के आसपास घूम फिरकर वृथा आश्वास से न जाने क्या चीज खोजते फिरने लगे। जब अच्छी तरह दिन चढ़ाया तब वे बाहर चबूतरे पर बैठकर सिर पर हाथ रखकर सोचने लगे। रात भर जागने के कारण चंद्रशेखर का शरीर शिथिल हो रहा था और नींद आने लगी थी। इसी समय एकाएक चौंक कर उन्होंने सुना, जय हो बाबा। सामने ही एक जटाजूटधारी सन्यासी खड़े थे। चंद्रशेखर ने भक्ति के साथ उनको प्रणाम किया। सन्यासी ने उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देकर कहा, बाबा तुम मन में वृथा शोक कर रहे हो। सुनकर चंद्रशेखर को बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने कहा, आप अंतर्यामी हैं, नहीं तो मेरे शोक का हाल आपने कैसे जान लिया? मैंने तो इस संबंध में किसी से कुछ कहा नहीं। सन्यासी ने कहा, बेटा मैं कहता हूं कि तुम्हारा जो खो गया है उसके लिए तुमको शोक न करके आनंद ही मानना चाहिए। चंद्रशेखर ने सन्यासी के दोनों पैर पकड़कर कहा, आप तो सभी जानते हैं कैसे वो चीज खो गई है और कहाँ जाने से फिर मिल सकती है। ये आप जब तक न बताएंगे तब तक मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। सन्यासी ने कहा, अगर मैं तुम्हारा बुरा चाहता तो बतला देता। मेरा यही कहना है कि भगवती ने दया करके जो हर लिया है उसके लिए शोक न करना। चंद्रशेखर ने सन्यासी को प्रसन्न करने के लिए दिन भर अनेक प्रकार से उनकी सेवा की। दूसरे दिन चंद्रशेखर अपनी गाय दुहकर दूध देने आए तो देखा सन्यासी का पता न था। चंद्रशेखर जब बालक थे जब उनके बाबा हरिहर एक दिन इसी चबूतरे पर बैठे बैठे चूना तमाखू मल रहे थे तब यों ही एक सन्यासी जय हो बाबा कहकर आ खड़ा हुआ था। हरिहर ने उस सन्यासी को कई दिन सेवा करके संतुष्ट किया। जाते समय सन्यासी ने कहा, तुम क्या चाहते हो? हरिहर ने कहा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जरा मेरा हाल सुनिए। एक समय इस गांव में हम लोगों की खूब बढ़ती थी। मेरे प्रपितामह ने दूर से एक कुलीन ब्राह्मण के लड़के को लाकर उसे अपनी लड़की ब्याह दी। उसके नाते के वंश के लोग आजकल हमारी संपत्ति से बड़े आदमी हो रहे हैं। इस समय हम लोगों की दशा अच्छी नहीं है, इसी कारण हमको उनका अहंकार सहना पड़ता है, किंतु अब नहीं सहा जाता। कोई ऐसा उपाय बताइए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारी फिर वैसी ही बढ़ती हो जाए। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, भैया छोटे होकर सुख से रहो, बड़े होने की चेष्टा में सुख नहीं मिल सकता। किंतु हरिहर ने नहीं माना। वंश को बड़ा बनाने के लिए वे सब स्वीकार करने को राजी हो गए। तब सन्यासी ने अपनी झोली से एक लपेटा हुआ कागज निकाला। कागज लंबा था और जन्मपत्री की तरह लपेटा हुआ था। सन्यासी ने उसे खोला। हरिहर ने देखा उसमें तरह तरह के चक्रों में अनेक सांकेतिक चिन्ह अंकित हैं। सबके नीचे लिखा था, राधा को विपरीत कर किया बुद्धि का काम, गोल बिना आधा रहा वहीं सिद्धि का धाम, इमली में बरगद उगा जाओ दक्षिण ओर, पूरब उत्तर कोण में जानो उसका ठौर। हरिहर ने कहा, बाबा ये तो कुछ भी समझ में नहीं आया। सन्यासी ने कहा, इस लेख को अपने पास रखो और देवी की पूजा करो। देवी की कृपा से तुम्हारे वंश का कोई न कोई आदमी इस लेख की बदौलत अतुल ऐश्वर्य पावेगा। हरिहर ने विनय करके कहा, क्या आप न बतला देंगे? सन्यासी ने कहा, नहीं, साधना के बिना सिद्धि नहीं मिलती। इसी समय हरिहर का छोटा भाई शंकर वहां पर आ गया। उसको देखकर हरिहर ने जल्दी से उस कागज को छिपा लेने की चेष्टा की। सन्यासी ने हंसकर कहा, बड़े होने की राह का दुख अभी से शुरू हो गया, किंतु छिपाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसके रहस्य को केवल एक ही आदमी समझ सकेगा, दूसरा कोई हजार सिर पटकने पर भी नहीं समझ सकता। मालूम नहीं तुम्हारे घराने में वो एक आदमी कौन है, अतएव तुम बेखटके इसे सबके सामने खोल सकते हो। सन्यासी जी चले गए, किंतु हरिहर से उस कागज को छिपाकर रखे बिना नहीं रहा गया। कहीं और कोई इससे लाभ ना उठा ले, कहीं छोटा भाई शंकर इसे समझ ना ले, इसी डर से हरिहर ने उस कागज को संदूक में बंद करके गृह देवता भद्रकाली के आसन के नीचे रख दिया। हर एक अमावस को आधी रात के समय देवी की पूजा करके वे एक बार उस कागज को निकालकर समझने की चेष्टा करते थे। समझते थे शायद देवी प्रसन्न होकर उन्हें उसके समझने की शक्ति दे दें। कुछ दिन बीतने पर शंकर अपने भाई हरिहर से विनय करने लगा कि दादा, मुझे एक बार वो कागज अच्छी तरह देख लेने दीजिए। हरिहर ने कहा, दुर्पागल, उस कागज में था क्या? वो बना हुआ सन्यासी एक कागज में न जाने क्या अंट संट लिख कर दे गया था, मैंने उसे जला भी डाला। शंकर चुप हो गया। एकाएक एक दिन शंकर घर से गायब हो गया। उसके बाद फिर उसका कुछ पता नहीं चला। हरिहर और सब कामकाज छोड़कर उसी गुप्त धन के ध्यान में लगे हुए थे। मृत्युकाल उपस्थित होने पर हरिहर ने अपने बड़े लड़के महावीर को वो सन्यासी का दिया कागज सौंप दिया। उस कागज को पाकर महावीर ने नौकरी छोड़ दी। उस कागज के पढ़ने की चेष्टा और भद्रकाली की पूजा में महावीर को मालूम भी नहीं हुआ कि उसका जीवन कब बीत गया। चंद्रशेखर महावीर के बड़े लड़के हैं। पिता की मृत्यु के बाद चंद्रशेखर उस गुप्त लिखन के अधिकारी हुए। उनकी दशा जितनी ही उत्तरोत्तरहीन होने लगी, उतना ही अधिक आग्रह के साथ उन्होंने उस कागज के पढ़ने का परिश्रम करना शुरू किया। इसी बीच में गत अमावस की रात को पूजा के बाद संदूक निकालकर देखा, उसमें वो कागज नहीं है। सन्यासी भी शोक न करने का उपदेश करके न जाने कहाँ चला गया। चंद्रशेखर ने कहा कि चाहे जिस तरह होगा, इस सन्यासी का पीछा नहीं छोड़ूंगा, इसी से उस गुप्त धन का पता चलेगा। अब चंद्रशेखर घर से निकलकर उस सन्यासी को खोजने चले। घूमते घूमते एक साल बीत गया। गांव का नाम था धारागोल। वहीं एक आटा दाल वाले की दुकान पर बैठकर चंद्रशेखर तमाखू चूना मलते हुए अन्य मनस्क भाव से तरह तरह की बातें सोच रहे थे। कुछ दूर पर मैदान के बीच से एक सन्यासी जाता हुआ देख पड़ा। पहले चंद्रशेखर ने उस ओर कुछ ध्यान नहीं दिया, किंतु थोड़ी देर बाद एकाएक उन्हें ध्यान आया कि ये तो वही सन्यासी है। झटपट वहां से उठकर चंद्रशेखर उसी ओर दौड़े। उनकी इस हरकत से दुकानदार को भी बड़ा अचरज हुआ, किंतु चंद्रशेखर को वो सन्यासी नहीं मिला। उस समय शाम का अंधेरा घेर आया था। चंद्रशेखर ये निश्चय न कर सके कि अपरिचित स्थान में कहां पर उस सन्यासी का पता लगेगा। दुकान में लौटकर चंद्रशेखर ने दुकानदार से पूछा, ये जो घना जंगल देख पड़ता है उसमें क्या है? दुकानदार ने कहा, एक समय यहां पर बड़ा भारी शहर बसा हुआ था, किंतु एक फकीर के शाप से एक बड़ी महामारी में राजा और प्रजा सब मर गए। लोग कहते हैं कि वहां पर खोजने से अभी तक बहुत सा धन और रत्न पाए जाते हैं, लेकिन दोपहर को भी उसके भीतर जाने का किसी को साहस नहीं होता। जो गया वो लौटकर नहीं आया। चंद्रशेखर का चित्त चंचल हो उठा। वे रात भर उसी दुकान में चटाई पर पड़े पड़े मच्छरों को मारते और उस जंगल की बात, उस सन्यासी की बात और खोए हुए कागज की बात पर विचार करते रहे। बारंबार पढ़ने के कारण उस कागज की सब बातें चंद्रशेखर को कंठ हो गई थीं। इसी से उस बेचैनी की दशा में उनके मस्तक के भीतर यही गूंजता रहा, राधा को विपरीत कर किया बुद्धि का काम, गोल बिना आधा रहा वही सिद्धि का धाम। सिर गर्म हो उठा। किसी तरह इन दो लाइनों को चंद्रशेखर अपने मन से हटा न सके। अंत को सवेरे के समय जब उनकी आंख लग गई, तब स्वप्न में दोनों सत्रों का अर्थ उनकी समझ में आ गया। राधा को विपरीत किया तो हुआ धारा, जिसमें गोल मिला दिया तो हुआ धारा गोल। ये तो वही सिद्धि का धाम धारा गोल है। आंख खुलते ही चंद्रशेखर उठ बैठे। दिन भर जंगल में घूमकर चंद्रशेखर फिर उसी दुकान पर लौट आए। दिन भर न कुछ खाया न पिया। लौटते समय बड़े कष्ट से राह खोजे मिली। दूसरे दिन थोड़ा सा चबेना लेकर चंद्रशेखर फिर जंगल में गए। तीसरे पहर एक जलाशय मिला। उस तालाब के बीच में साफ पानी था। किनारे किनारे चलने का रास्ता और कोकाबेली के पेड़ थे। पत्थर का पक्का घाट टूट फूट कर मिट्टी में मिल गया है। वहीं चबेना चबाकर पानी पीकर चंद्रशेखर इधर उधर टहलकर देखने लगे। तालाब के पश्चिम ओर एकाएक चंद्रशेखर जैसे चौंक कर खड़े हो गए। देखा इमली के भीतर से एक बरगद का पेड़ निकला हुआ है। उसी समय उन्हें याद आ गया, इमली में बरगद उगा, जाओ दक्षिण ओर। दक्षिण तरफ और जाने पर बहुत घना जंगल देख पड़ा। वहां पर बेत की झाड़ी थी, उसके भीतर होकर चलना असंभव था। चंद्रशेखर ने मन में कहा कि इस जगह को न छोड़ना चाहिए। झाड़ी के भीतर दृष्टि डालने से थोड़ी ही दूर पर चंद्रशेखर को एक पुराने मंदिर की कलसी देख पड़ी। चंद्रशेखर बड़े कष्ट उठाते हुए उसी मंदिर के पास जा पहुंचे। देखा वहां पास ही एक चूल्हा बना है और जली हुई लकड़ियां पड़ी हैं। मंदिर का द्वार टूटा हुआ था। चंद्रशेखर ने बड़ी सावधानी से उसके भीतर झांक कर देखा। उसमें न कोई आदमी था न कोई प्रतिमा थी, केवल एक कंबल, कमंडलू और गेरुआ कपड़ा पड़ा हुआ था। उस समय संध्या होने में अधिक देर न थी। गांव बहुत दूर पर था। अंधकार में जंगल के भीतर राह ढूंढना कठिन था। इसी से उस मंदिर में मनुष्य के रहने के चिन्ह देखकर चंद्रशेखर को बड़ी खुशी हुई। मंदिर के द्वार पर मंदिर की गिरी हुई एक शिला पड़ी थी। उसी पर बैठकर सिर झुकाए सोचते सोचते चंद्रशेखर ने देखा उसमें कुछ खुदा हुआ है। झुककर पढ़कर देखा, उसमें एक चक्र लिखा हुआ देख पड़ा। उसमें कुछ स्पष्ट और कुछ लुप्त अक्षर लिखे हुए थे। ये चक्र चंद्रशेखर का सुपरिचित था। कितनी ही अमावसों में मंदिर के भीतर सुगंधित धूप धूम और घी के दीपक के प्रकाश में कागज पर अंकित इस चक्र चिन्ह के ऊपर झुककर रहस्य समझने के लिए एकाग्र मन से उन्होंने देवी से प्रार्थना की है। आज अभीष्ट सिद्धि के बहुत ही निकट आकर उनका सारा शरीर कांपने सा लगा। कहीं किनारे आकर नाव न डूब जाए, कहीं किसी साधारण भूल से सब मिट्टी न हो जाए, कहीं वो सन्यासी पहले ही आकर सब ले न गया हो, इसी आशंका ने उनके हृदय में हलचल सी मचा दी। बहुत सोचने पर भी वे ये निश्चय न कर सके कि अब क्या करना चाहिए। उन्हें जान पड़ने लगा कि वे शायद उस ऐश्वर्य भंडार के ऊपर ही बैठे हुए हैं, किंतु तो भी कुछ जान नहीं पाते। बैठे बैठे वे दुर्गा दुर्गा कहने लगे। शाम का अंधेरा और भी घना हो आया। झींगरों की झनकार जंगल में गूंज उठी। इसी समय कुछ दूर पर घने जंगल के भीतर अग्नि का प्रकाश देख पड़ा। चंद्रशेखर उस पत्थर पर से उठ खड़े हुए और उसी ओर लक्ष्य करके चले। बहुत कष्ट से कुछ दूर जाकर एक पीपल के पेड़ की डाल पर से उन्हें स्पष्ट देख पड़ा कि वही परिचित सन्यासी अग्नि के प्रकाश में वही कागज सामने रखे एकाग्र भाव से जमीन पर एक लकड़ी से कुछ गणित सा कर रहा है। वो वही चंद्रशेखर के बाप दादे के समय का कागज था। अरे बदमाश चोर, इसी से तूने चंद्रशेखर को शोक न करने का उपदेश दिया था। सन्यासी हिसाब करता है और फिर एक लकड़ी से जमीन नापता है। कुछ दूर नाप कर हताश होकर सिर हिलाकर फिर हिसाब करने लगता है। इस तरह करके जब रात बीत चली, जब सवेरे की ठंडी हवा से वृक्षों के पत्ते हिल उठे, तब सन्यासी उस कागज को लपेटकर चल दिया। चंद्रशेखर अपने कर्तव्य को ठीक न कर सके। ये तो उन्हें निश्चित रूप से मालूम हो गया कि सन्यासी की सहायता के बिना वे उस लेख के रहस्य को किसी तरह समझ नहीं सकते। ये भी निश्चित था कि वो लोभी सन्यासी उनकी सहायता न करेगा। अतएव छिपे छिपे सन्यासी की ताक लेने के सिवा और उपाय नहीं है। किंतु दिन को गांव में गए बिना भोजन नहीं मिल सकता, इसलिए कम से कम कल एक दफा गांव में जाना ही पड़ेगा। सवेरे का अंधकार कुछ फीका पड़ते ही चंद्रशेखर पेड़ पर से उतर आए। जहां मिट्टी पर सन्यासी हिसाब लगा रहा था, वहां आकर अच्छी तरह देखा, पर कुछ समझ में न आया। चारों ओर घूमकर देखा, जंगल के अन्य स्थानों से उस स्थान में कुछ अंतर न था। जब जंगल के भीतर प्रकाश फैल गया, तब चंद्रशेखर बड़ी सावधानी से चारों ओर देखते हुए गांव की ओर चले। उन्हें डर था कि सन्यासी कहीं उनको देख न ले। जिस दुकान में चंद्रशेखर ठहरे हुए थे, उसके पास ही एक विधवा के यहां उस दिन ब्रह्मभोज था। आज वहीं चंद्रशेखर को भोजन मिल गया। कई दिन पेट भरकर भोजन न मिलने के बाद आज अच्छा भोजन मिला। चंद्रशेखर ने खूब छक लिया। उसके बाद तमाकू चूना फाँक कर जैसे चंद्रशेखर चटाई पर लेटे, वैसे ही पहली रात को जगने के कारण उनकी आंख लग गई। चंद्रशेखर ने निश्चय किया था कि आज सिदौसी खा पीकर पहले ही से ठिकाने पर पहुंच जाएंगे, किंतु ठीक उल्टा हुआ। जिस समय उनकी आंख खुली, उस समय सूर्य अस्त हो चुके थे। तब भी चंद्रशेखर से नहीं रहा गया। वे अंधेरे में ही जंगल के भीतर घुसे। देखते ही देखते रात चढ़ आई। पेड़ों के बीच दृष्टि किसी तरह काम नहीं देती। जंगल में पग पग पर अटकना पड़ता था। चंद्रशेखर को मालूम न था कि वे किधर कहाँ जा रहे हैं। रात बीत जाने पर उन्हें मालूम हुआ कि वे रात भर जंगल के एक ही स्थान में घूमते रहे। कौवे कांव कांव करके उड़ते हुए गांव की ओर जाने लगे। वो शब्द चंद्रशेखर को व्यंग्यपूर्ण धिक्कार सा सुन पड़ा। हिसाब में बार बार भूल होने पर भी सन्यासी ने धैर्य नहीं छोड़ा और अंत को सुरंग की राह ढूंढ निकाली। वो सन्यासी मुंह में बत्ती दबाकर सुरंग के भीतर घुसा। पक्की दीवार में जगह जगह पर दरारें पड़ गई थीं। बीच बीच में जगह जगह पर पानी भी टपक रहा था। जगह जगह जिंदा मेंढक पड़े सो रहे थे। उस विकट राह से कुछ दूर जाने पर सन्यासी ने देखा कि सामने भी दीवार है, राह रुकी हुई है। कुछ भी समझ में न आया। दीवार में सब जगह साबर से ठोंक ठोंक कर देखा, कहीं पोला न जान पड़ा। कोई संदेह नहीं रहा कि वो राह वहीं पर समाप्त हो गई है। सन्यासी फिर उसी कागज को खोलकर बैठ गया और हाथ पर सिर रखकर सोचने लगा। वो रात इसी तरह बीत गई। दूसरे दिन हिसाब लगाकर फिर सन्यासी उसी सुरंग में घुसा। उस दिन गुप्त संकेत के अनुसार सन्यासी ने उसी सामने की दीवार के एक विशेष स्थान से एक पत्थर हटाकर तंग राह का पता लगाया। उसी राह से चलते चलते फिर एक जगह राह बंद मिली। अंत में पांचवीं रात को हिसाब समाप्त करके सन्यासी कह उठा कि आज मुझे राह मिल गई, अब किसी तरह की भूल नहीं हो सकती। राह बहुत ही जटिल थी। उसमें अनेक शाखा प्रशाखाएं थीं। कहीं कहीं इतनी तंग राह थी कि बैठे बैठे गुटकी मारकर चलना पड़ता था। बड़े यत्न से बत्ती लिए चलते चलते सन्यासी एक गोल कोठरी ऐसी जगह में पहुंचा। उस कोठरी के बीच में बड़ा भारी इंदारा था। बत्ती के उजेले में सन्यासी को उसकी तह नहीं देख पड़ी। कोठरी की छत से एक मोटी सी जंजीर उस इंदार के भीतर लटक रही थी। सन्यासी ने बड़ा जोर लगाकर उस जंजीर को जरा हिलाया तो ठन करके एक भारी शब्द हुआ और उससे वो स्थान गूंज उठा। सन्यासी जोर से कह उठा, मिल गया। सन्यासी के मुंह से ये बात निकलते ही उस जगह की टूटी हुई दीवार पर से एक पत्थर लुढ़क पड़ा, साथ ही और एक सचेतन पदार्थ धम से गिरकर चिल्ला उठा। एकाएक इस शब्द से सन्यासी चौंक उठा। उसके हाथ से छूटकर बत्ती बुझ गई। सन्यासी ने पूछा, कौन है? कुछ भी उत्तर न मिला। तब अंधेरे में टटोलने से सन्यासी को वो किसी आदमी का शरीर मालूम पड़ा। उसे हिलाकर सन्यासी ने पूछा, तुम कौन हो? फिर भी कुछ उत्तर न मिला। वो आदमी बेहोश हो गया था। तब चकमक पत्थर को ठोंक ठोंक कर बड़े कष्ट से सन्यासी ने आग जलाई। इतने में उस आदमी को होश आ गया। उठने की चेष्टा से व्यथित होकर वो कांख उठा। सन्यासी, कौन? चंद्रशेखर, तुमको ये दुर्बुद्धि क्यों हुई? चंद्रशेखर ने कहा, बाबा माफ करो, भगवान ने मुझको सजा दे दी। तुमको खींचकर पत्थर मारते समय मैं अपने आप को संभाल नहीं सका। पैर फिसल जाने से आप भी आ रहा, मेरी पीठ की हड्डी जरूर टूट गई है। सन्यासी ने कहा, मुझे मारने से तुमको क्या मिलता? चंद्रशेखर ने कहा, मिलने की बात पूछते हो? तुम किस लोभ से मेरे मंदिर से वो कागज चुरा लाकर इस सुरंग में घूम रहे हो? तुम चोर हो, दगाबाज हो। मेरे पूर्व पुरुष को जो सन्यासी वो कागज दे गए थे, उन्होंने कहा था कि तुम्हारे ही वंश का कोई आदमी इस लेख के भेद को जान सकेगा। ये गुप्त धन हमारे वंश को ही मिलना चाहिए। इसी कारण कई दिन से मैं कुछ खाए पिए बिना ही तुम्हारे पीछे पीछे छाया की तरह फिरता रहा हूं। आज जब तुम कह उठे कि मिल गया, तब मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आकर दीवार के इस गड्ढे के भीतर छिपा बैठा था। वहीं से एक पत्थर उखाड़कर मैं तुमको मारने चला, किंतु शरीर कमजोर था और जगह भी चिकनी थी, इसी से गिर पड़ा। अब तुम मुझे मार डालो सो भी अच्छा, मैं यक्ष होकर इस धन की रक्षा करूंगा। किंतु तुम किसी तरह इस धन को न ले सकोगे। अगर लेने की चेष्टा करोगे तो मैं ब्राह्मण तुम्हारे ऊपर इसी इंदारे में फांद कर आत्महत्या कर लूंगा। ये धन तुम्हारे लिए ब्रह्म रक्त गौरक्त के तुल्य होगा। इस धन से कभी तुम सुख भोग न कर सकोगे। मेरे पिता पितामह इसी धन में मन लगाकर मर गए हैं। इसी धन का ध्यान करते करते हमारा वंश दरिद्र हो गया। इस धन के लिए घर में अनाथ स्त्री और बच्चे को छोड़कर, खाना पीना सुख चैन छोड़कर मैं पागल की तरह साल भर से फिर रहा हूं। तुम मेरे सामने इस धन को कभी न ले सकोगे। सन्यासी ने कहा, चंद्रशेखर तो सुनो, मैं सब बातें कहता हूं। तुम जानते हो कि तुम्हारे बाबा के एक छोटे भाई थे, और उनका नाम शंकर था। चंद्रशेखर, हाँ वे घर से चले गए थे, फिर उनका पता नहीं लगा। सन्यासी ने कहा, मैं वही शंकर हूं। चंद्रशेखर ने हताश होकर लंबी सांस ली। अब तक चंद्रशेखर ये समझे बैठे थे कि उस गुप्त धन के अधिकारी केवल वही हैं, किंतु एक उन्हीं के आत्मीय ने आकर उनके इस ख्याल को मिट्टी में मिला दिया। शंकर सन्यासी ने कहा, दादा हरिहर को जब से वो कागज सन्यासी से मिला, तब से बराबर वे ये चेष्टा करते रहे कि मैं उसका पता न पा सकूं, किंतु वे जितना ही छिपाते थे उतना ही उसका पता लगाने के लिए मेरी उत्सुकता बढ़ने लगी। उन्होंने देवी के आसन के नीचे संदूक के भीतर वो कागज छिपा रखा था। मुझे पता लग गया, मैंने उसकी दूसरी कुंजी बना ली। नित्य उस संदूक से कागज निकालकर मैं उसकी नकल करने लगा। जिस दिन नकल पूरी हुई उसी दिन धन का पता लगाने के लिए मैं घर से चल दिया। मेरे घर में अनाथ स्त्री और एक बच्चा था, आज उनमें से कोई जीवित नहीं है। मैं न जाने कहाँ कहाँ घूमता रहा, ये समझकर कि सन्यासी के दिए हुए कागज के लेख का अर्थ कोई सन्यासी ही बता सकता है। मैंने अनेक सन्यासियों की सेवा की, अनेक बने हुए सन्यासियों ने मेरे इस कागज का पता पाकर उसे चुराने की भी चेष्टा की। इसी तरह कई साल बीत गए, मुझे दम भर के लिए भी सुख या शांति न थी। अंत को पूर्व जन्म के पुण्य से कुमाऊं के पहाड़ पर स्वामी स्वरूपानंद से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे कहा, भैया लोभ को मन से दूर करो, तब विश्वभर में व्याप्त संपत्ति आपसे आप तुमको मिल जाएगी। उन्होंने मेरे मन की बेचैनी मिटा दी। उनके प्रसाद से आकाश का प्रकाश और पृथ्वी की श्यामलता ही मुझे राज संपत्ति से बढ़कर मालूम पड़ने लगी। एक दिन सर्दियों की ऋतु में शाम को पहाड़ की शिला पर जल रही बाबा जी की धूनी में उस कागज को मैंने जला डाला। बाबा कुछ मुस्काए, उस मुस्कान का मतलब उस समय नहीं समझा था, अब समझा। उन्होंने अवश्य अपने मन में यही कहा था कि कागज जला डालना सहज है, किंतु वासना को जला डालना सहज नहीं। उस कागज का कोई चिन्ह जब नहीं रह गया, तब मेरे मन के चारों ओर से एक नागपाश का बंधन सा खुल गया। छुटकारे के अपूर्व आनंद से मेरा हृदय परिपूर्ण हो उठा। सोचा कि अब मेरे लिए कुछ डर नहीं है, अब मैं जगत में कुछ नहीं चाहता। इस घटना के उपरांत मैं स्वामी जी से बिछड़ गया। मैंने बहुत खोजा पर उनका कहीं पता न लगा। तब मैं सन्यासी होकर निर्लिप्त भाव से इधर उधर फिरने लगा। कई वर्ष बीत गए, उस कागज के लेख की बात एक तरह से भूल ही गई। इसी समय एक दिन मैं इसी धारागोल के जंगल के भीतर घुसकर टूटे मंदिर में जाकर ठहरा। दो एक दिन रहने पर मैंने देखा कि मंदिर की दीवार में जगह जगह पर तरह तरह के चिन्ह अंकित हैं। वे चिन्ह मेरे पूर्व परिचित थे। मुझे कुछ भी संदेह न रहा कि मैं इतने दिनों तक जिसकी खोज में घूम रहा था उसी का पता चल रहा है। मैंने मन में कहा कि अब यहां नहीं रहूंगा, इस जंगल को छोड़ जाऊंगा, लेकिन छोड़कर जा न सका। सोचा देख ही न लूं क्या है, कौतूहल को बिल्कुल मिटाकर जाना ही अच्छा। उन चिन्हों की बहुत देखभाल की, लेकिन कुछ फल न हुआ। बार बार यही ख्याल होने लगा कि मैंने उस कागज को जला क्यों डाला, उसे पास रखने में हानि ही क्या थी। फिर अपने गांव गया। अपने पुरखों के घर की बहुत ही बुरी दशा देखकर मैंने सोचा कि मैं तो सन्यासी हूं, मुझे तो धन और रत्न की कोई जरूरत नहीं, किंतु ये गरीब तो गृहस्थ हैं, वो गुप्त धन इनके लिए निकाल देने में कोई दोष नहीं है। मुझे मालूम था कि वो सन्यासी का दिया कागज कहाँ है। उस कागज को लाने में मुझे कुछ कठिनाई नहीं हुई। इसके बाद साल भर से इस जंगल में हिसाब लगाना और धन का पता चलाना ही मेरा काम रहा है। मेरे मन में और कोई चिंता न थी। जितना ही बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ता था उतना ही आग्रह बढ़ता जाता था। पागल की तरह दिन रात यही काम किया करता था। मालूम नहीं इसी बीच कब आकर तुमने मेरा पीछा किया। अगर मैं स्वाभाविक अवस्था में होता तो तुम कभी अपने को मुझसे छिपा न सकते, किंतु मैं तो तन्मय हो रहा था। मुझे पता न था कि इधर उधर क्या हो रहा है। जो गुप्त धन मैं खोज रहा था उसका अभी अभी पता लगा है। यहां जितना धन है उतना धन पृथ्वी के बड़े बड़े राजाओं के यहां भी न निकलेगा। केवल एक और इशारे का रहस्य जान लेने पर वो धन मिल जाएगा। वही इशारा सबसे कठिन है, किंतु मैंने उसे भी मन में समझ लिया है। इसी कारण मिल गया कहकर खुशी के मारे में चिल्ला उठा था। अगर चाहूं तो दम भर में उसी धन रत्न के खजाने में जाकर खड़ा हो जाऊं। चंद्रशेखर ने शंकर के पैर पकड़कर कहा, बाबा तुम सन्यासी हो, तुम्हें तो धन की कोई जरूरत नहीं, मुझे उस धन के भंडार में ले चलो। शंकर ने कहा, आज मेरा अंतिम बंधन भी कट गया, तुम्हारा मारा पत्थर मेरे शरीर में तो नहीं लगा, किंतु उसने मेरे मोह को चूर चूर कर दिया। आज मुझे लोभ की कराल मूर्ति देख पड़ी। मेरे गुरु स्वामी स्वरूपानंद की उस मंद मुस्कान ने इतने दिनों के बाद मेरे हृदय के कल्याण दीपक में ना बुझने वाला प्रकाश उत्पन्न कर दिया। चंद्रशेखर ने शंकर के पैर पकड़कर फिर कातर स्वर से कहा, तुम मुक्त पुरुष हो, पर मैं मुक्त नहीं हूं। मुझे मुक्ति की चाह भी नहीं। इसी से प्रार्थना करता हूं कि मुझको इस ऐश्वर्य से वंचित न करो। बेटा, तो तुम अपना ये कागज लो, अगर धन का पता लगा सको तो लगा लो। ये कहकर साबर और वो कागज चंद्रशेखर के पास रखकर सन्यासी शंकर चल दिए। चंद्रशेखर ने कहा, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़कर न जाओ, वो धन दिखा दो। कुछ भी उत्तर न मिला। तब चंद्रशेखर उस सुरंग से बाहर निकलने की चेष्टा करने लगे, किंतु राह बहुत ही जटिल गोरख धंधे के समान थी। बार बार बाधाओं का सामना होने लगा। अंत को घूम घूम कर थक जाने पर वे एक जगह लेट गए। लेटते ही उन्हें नींद आ गई। सोकर जब वे जागे तब ये जानने का कोई उपाय न था कि इस समय रात है या दिन या कै बजे हैं। बहुत भूख लगने पर चंद्रशेखर ने धोती से चबेना निकालकर चबाया। उसके बाद फिर हाथ से टटोलकर सुरंग से बाहर निकलने की राह खोजने लगे। अनेक स्थानों में बाधा पाकर चंद्रशेखर बैठ गए। कोई उपाय न देखकर चंद्रशेखर ने पुकारा, अजी सन्यासी बाबा, तुम कहाँ हो? चंद्रशेखर का शब्द उस सुरंग की अनेक शाखा प्रशाखाओं में प्रतिध्वनित हो उठा। पास ही से उत्तर मिला, मैं तुम्हारे पास ही हूं, बतलाओ क्या चाहते हो? चंद्रशेखर ने कातर स्वर से कहा, वो धन कहाँ है, मुझे दिखा दो। फिर सन्नाटा छा गया। चंद्रशेखर ने फिर कई बार पुकारा पर कुछ उत्तर नहीं मिला। उसी अंधकारपूर्ण स्थान में चंद्रशेखर फिर लेट रहे। नींद से फिर उठने पर अंधेरे में चंद्रशेखर ने पुकार कर कहा, बाबा कहाँ गए? पास ही से उत्तर मिला, यही हूं, क्या चाहते हो? चंद्रशेखर ने कहा, मैं और कुछ नहीं चाहता, मुझे इस सुरंग से बाहर निकाल ले चलो। सन्यासी ने पूछा, तुम धन नहीं चाहते? चंद्रशेखर ने कहा, नहीं। तब चकमक पत्थर झाड़ने का ठक ठक शब्द सुन पड़ा और कुछ देर बाद प्रकाश देख पड़ा। सन्यासी ने कहा, तो आओ चंद्रशेखर, इस सुरंग से बाहर चलें। चंद्रशेखर ने कातर स्वर से कहा, तो बाबा क्या इतना परिश्रम बिल्कुल व्यर्थ ही चला जाएगा? इतने कष्ट के बाद भी क्या धन न पाऊंगा? उसी समय बत्ती बुझ गई। कैसे निठुर हो, कहकर चंद्रशेखर वहीं बैठ गए और सोचने लगे। समय जानने का कोई उपाय नहीं और अंधेरे का भी ओर छोर नहीं। चंद्रशेखर का जी चाहा कि अपने सारे शरीर और मन के बल को लगाकर उस अंधकार को चूर्ण कर डालें। प्रकाश आकाश और विश्वचित्र के वैचित्र को देखने के लिए उनका चित्त व्याकुल हो उठा। चंद्रशेखर ने कहा, अजी सन्यासी, ओ निठुर सन्यासी, मैं धन नहीं चाहता, मुझे बाहर ले चलो। सन्यासी ने कहा, धन नहीं चाहते तो फिर मेरा हाथ पकड़ लो और मेरे साथ चलो। इस बार रोशनी नहीं हुई। एक हाथ से लठिया टेकते हुए दूसरे हाथ से सन्यासी का वस्त्र पकड़कर चंद्रशेखर धीरे धीरे चले। बहुत देर तक अनेक टेढ़े मेढ़े मार्गों में होते हुए एक जगह पर आकर सन्यासी ने कहा, खड़े हो। चंद्रशेखर खड़े हो गए। उसके बाद एक मोर्चा खाए हुए लोहे के फाटक के खुलने का उत्कट शब्द सुन पड़ा। सन्यासी ने चंद्रशेखर का हाथ पकड़कर कहा, आओ। चंद्रशेखर आगे बढ़कर मानो एक घर में पहुंचे। तब फिर चकमक पत्थर ठोकने का शब्द सुन पड़ा। कुछ देर बाद जब बत्ती जली तब बहुत ही विचित्र दृश्य देख पड़ा। चारों ओर दीवार से सटे हुए मोटे मोटे सोने के पत्थर ढेर थे, मानो पाताल में किसी ने सूर्य का कठिन प्रकाश पुंज जमा कर रखा हो। चंद्रशेखर की आंखें विस्मय से चमकने लगीं। वे पागलों की तरह कहने लगे, ये सोना मेरा है, इसको मैं किसी तरह छोड़कर नहीं जा सकता। अच्छा, छोड़कर न जाओ, ये बत्ती यहां रखी है और ये सत्तू और घड़ा भर पानी भी यहां रखा हुआ है। देखते ही देखते सन्यासी वहां से निकल गया। इसके बाद ही फाटक के किवाड़े बंद होने का शब्द सुन पड़ा। चंद्रशेखर बार बार उस स्वर्ण भंडार को उलट पुलट कर देखते इधर उधर घूमने लगे। छोटे छोटे टुकड़ों को उठा उठाकर फर्श पर डालने, गोद में रखने और अपने शरीर में छुआने लगे। अंत को सोने के पत्थर बिछाकर वे उन्हीं पर लेट रहे। फिर जब जाग कर उठे तब देखा, सोना चमक रहा है, सोने के सिवा और कुछ नहीं है। चंद्रशेखर सोचने लगे कि पृथ्वी के ऊपर शायद इस समय सवेरा हुआ होगा, सब जीव जंतु आनंद से जाग उठे होंगे। चंद्रशेखर के घर के बाग से जो सवेरे भीनी भीनी फूलों की महक आती थी, वो भी कल्पना के द्वारा मानो उसकी नाक में प्रवेश करने लगी। उनको मानो स्पष्ट रूप से आंखों के आगे देख पड़ा कि किसानों के लड़के बैलों को लिए गाते हुए खेतों की ओर जा रहे हैं। चंद्रशेखर फाटक पर धक्के मार मार कर पुकारने लगे, अजी सन्यासी बाबा, क्या हो? द्वार खुल गया। सन्यासी ने कहा, क्या चाहते हो? चंद्रशेखर ने कहा, मैं बाहर जाना चाहता हूं, किंतु क्या अपने साथ दो एक सोने के टुकड़े भी न ले जा सकूंगा? सन्यासी ने उसका कुछ उत्तर न देकर एक नई बत्ती जलाई, पानी से भरा एक कमंडलू और थोड़ा सा चबेना रख दिया। उसके बाद सन्यासी चला गया। फाटक फिर बंद हो गया। चंद्रशेखर ने एक पतला सा सोने का पत्थर उठाया और धीरे धीरे तोड़ताड़ कर उसके कई टुकड़े कर डाले। उन टुकड़ों को मिट्टी की तरह चारों ओर बिखरा दिया। कभी दांतों से चबा चबा कर कई पत्थरों पर निशान डाल दिए, कभी जमीन पर पड़े हुए पत्थर को वे बार बार पैरों से रोंदने लगे। वे मन में कहने लगे कि पृथ्वी पर ऐसे कितने सम्राट होंगे जो सोने को इस तरह नष्ट कर सकते हों। चंद्रशेखर को मानो प्रलय करने वाला कोप चढ़ाया। उनका जी चाहने लगा कि सोने के ढेर को चूर्ण करके धूल की तरह झाड़ू से बुहार दें, और इसी तरह वे पृथ्वी के सब सुवर्ण सेवक राजा महाराजाओं का भी अनादर कर सकते हैं। इसी तरह जितनी देर तक हो सका चंद्रशेखर ने स्वर्ण को पद दलित अपमानित करके अपने जी की जलन मिटाई। उसके बाद वे थककर सो रहे। जागने पर फिर उन्हें अपने चारों ओर वही सोने का ढेर देख पड़ा। तब फाटक में धक्के मारकर वे चिल्लाने लगे, अजी सन्यासी बाबा, मैं ऐसा सोना नहीं चाहता, सोना मुझको न चाहिए। किंतु फाटक नहीं खुला। पुकारते पुकारते चंद्रशेखर का गला पड़ गया, किंतु फाटक नहीं खुला। तब सोने की ईंटें उठा उठाकर वे फाटक पर मारने लगे, लेकिन कुछ भी फल न हुआ। चंद्रशेखर का मुंह उतर गया। उन्होंने मन में कहा कि तो फिर क्या वो सन्यासी ना आवेगा? इस स्वर्ण के कैद खाने में क्या अन्न पानी के लिए तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा? उस समय स्वर्ण को देखकर चंद्रशेखर को बड़ा डर लगने लगा। विभीषिका के निशब्द कठिन हास्य की तरह स्वर्ण के ढेर चारों ओर स्थिर भाव से पड़े हुए हैं। उनमें न हिलना डुलना है और न कुछ परिवर्तन है। चंद्रशेखर का जो हृदय इस समय धड़क रहा है, उसके साथ उनका कुछ भी संबंध नहीं, कुछ भी सहानुभूति नहीं। वे स्वर्णपिंड न प्रकाश चाहते हैं, न आकाश चाहते हैं, न हवा चाहते हैं, न प्राण चाहते हैं और न मुक्ति चाहते हैं। वे इस चिरकालीन अंधकार में सदा उज्ज्वल कठिन पड़े रहना पसंद करते हैं। चंद्रशेखर सोचने लगे कि पृथ्वी पर इस समय संध्या का समय होगा। कहाँ है वो सुनहरी संध्याकाल की शोभा? कहाँ है वो सुवर्ण जो घड़ी भर के लिए अपनी मनोहर आभा दिखलाकर अंधकार में लीन हो जाता है? उसके बाद नक्षत्रों का निकलना, दीपक जलाकर बहुओं का घर के कोने में रखना, मंदिरों में आरती के अवसर पर घंटे बजना, सब याद पड़ने लगा। गांव की और घर की बहुत साधारण बातें भी आज चंद्रशेखर की दृष्टि में महत्व की हो गईं। उनका टीपू कुत्ता जो पूंछ उठाए दीवार पर सोया करता था, वो कल्पना भी आज जैसे चंद्रशेखर को व्यथित करने लगी। धारागोल गांव में जिस दुकानदार के यहां कई दिन तक चंद्रशेखर रहे थे, वो इस समय दुकान बंद करके अपने घर को जा रहा होगा। ये स्मरण करके चंद्रशेखर को जान पड़ने लगा कि वो दुकानदार बड़े सुख में है। चंद्रशेखर फिर मन में कहने लगे कि न जाने आज कौन वार है। यदि रविवार है तो बाजार से सौदा खरीद खरीद कर लोग अपने घर जा रहे होंगे, साथ से छूटे हुए साथी को खड़े होकर पुकार रहे होंगे। खेतों के बीच की पगडंडियों से होकर, गांवों के भीतर होकर किसान लोग सौदे की पोटली लिए नक्षत्रों के क्षीण प्रकाश में चले जा रहे होंगे। धरती के ऊपर के इस विचित्र बृहत चिरचंचल जीवन में अत्यंत तुच्छ, अत्यंत दीन होकर अपने जीवन को मिलाने के लिए मिट्टी की सैकड़ों तहें तोड़कर उनके निकट संसार की पुकार पहुंचने लगी। वो जीवन, वो आकाश, वो प्रकाश उन्हें पृथ्वी भर के रत्नों से अधिक बहुमूल्य जान पड़ने लगा। उन्हें जान पड़ने लगा कि घड़ी भर के लिए एक बार अगर अपनी उसी जननी जन्मभूमि की धूल भरी गोद में, उसी उन्मुक्त प्रकाशित नीले आकाश के तले, उसी सुगंधित वायु की महक को सूंघ कर केवल एक सांस लेकर मर जाऊं तो भी मेरा जन्म सार्थक हो जाए। इसी समय द्वार खुला। सन्यासी ने भीतर आकर कहा, चंद्रशेखर क्या चाहते हो? चंद्रशेखर, मैं और कुछ नहीं चाहता, मुझे इस सुरंग से, इस अंधकार से, इस गोरख धंधे से, इस सोने के कैद खाने से बाहर निकाल ले चलो। मैं प्रकाश चाहता हूं, आकाश चाहता हूं, छुटकारा चाहता हूं। सन्यासी, इस सोने से भी बढ़कर बहुमूल्य रत्नों का भंडार यहां पर है, वहां ना चलोगे? चंद्रशेखर, नहीं। सन्यासी, एक बार जाकर देख आने का कौतूहल भी नहीं है? चंद्रशेखर, नहीं, मैं देखना भी नहीं चाहता। मुझे यदि लंगोटी मारकर भीख मांगनी पड़े तो भी मैं यहां घड़ी भर रहना नहीं चाहता।
सन्यासी, तो आओ चलो।
चंद्रशेखर का हाथ पकड़कर सन्यासी उन्हें उसी गहरे इंदारे के पास ले गए और वो कागज उनके हाथ में देकर बोले, इसे तुम क्या करोगे? चंद्रशेखर ने उस कागज के टुकड़े टुकड़े करके उसी इंदारे के भीतर फेंक दिए। अभी आप सुन रहे थे रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी गुप्त धन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।